ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कल बनी सहमति का बार बार उल्लंघन हुआ है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मिसरी ने कहा कि सशस्त्र बल संघर्ष विराम उल्लंघन का उचित जवाब दे रहे हैं। भारत इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान से संघर्ष विराम उल्लंघन को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने तथा स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया है। श्री मिसरी ने कहा कि सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा संघर्ष विराम उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे।
विदेश सचिव श्री मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशंस महानिदेशक ने कल दोपहर युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी। किसी अन्य मुद्दे पर और किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्ष जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं। श्री मिस्री ने कहा कि सैन्य संचालन महानिदेशक फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम के उल्लंघन की खबर है। ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है और दोनों देशों से तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि ब्रिटेन संघर्ष विराम के लिए कुछ दिनों से दोनों देशों के साथ बातचीत कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने इसे तनाव कम करने और मौजूदा शत्रुता खत्म करने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि श्री गुतेरेश को उम्मीद है कि इस समझौते से शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को हल करने में अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगा। ब्रिटेन ने भी संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है और दोनों देशों से तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। भारत के विरुद्ध भड़काऊ कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को खत्म कर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत का लक्ष्य खासतौर पर आतंकी शिविरों और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ठिकानों को निशाना बनाना है। कर्नल कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने कई झूठे दावे किए हैं, जबकि भारतीय सशस्त्र बलों ने किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया है।
पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है।
मेजर जनरल बिपिन बख्शी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि भारत ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि अगर पाकिस्तान आगे किसी भी तरह की कार्रवाई करता है तो हम इसका जवाब सख्ती से देंगे।
हमने बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही रीजन तरीके से हमने एक्शन लिए हैं। मेन हमारा मुद्दा था कि आतंकवाद को रोक देना है। सरहद पार आतंकवाद आप ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मुंगी खानी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से संदेश बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हमने दे दिया है।
पाकिस्तान के उकसावे की कार्यवाही का भारत ने करारा जवाब दिया है। इसके साथ पाकिस्तान को घेरने के लिए वैश्विक स्तर पर आक्रामक कूटनीति ने पड़ोसी देशों को घुटने टेकने पर बाध्य कर दिया। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने स्पष्ट किया कि इस हमले के पीछे के आतंकियों और उनके रक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा।
पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध में कटौती, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने के साथ साथ सिंधु जल संधि को निलंबित और पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने जैसे कई ठोस कदम उठाए। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को उजागर करने और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने के लिए वैश्विक मुहिम चलाई। ठीक इसके बाद भारत ने इस महीने की 7 तारीख की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें शुरुआती कार्रवाई में पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कहर बरपाया गया। भारतीय सेना यही नहीं रुकी और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के खिलाफ अपने जवाबी हमले को दोगुना कर दिया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 5 कुख्यात आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों में मुदस्सर खादियान उर्फ खास अबू जुंदाल, मौलाना मसूद अजहर का निकट संबंधी हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर खालिद उर्फ अबू अक्षा और मोहम्मद हसन खान शामिल हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सूत्रों ने बताया है कि राज्यों को सतर्क रहने, सीमा पार से किसी गोलीबारी से निपटने और अपने क्षेत्र में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय करने को कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद यह बैठक हुई। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर के हैबिटेट लाइब्रेरी और संसाधन केंद्र में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यता विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर श्री मनोहर लाल ने केंद्र की गतिविधियों, विशेष रूप से इसके हरित पहलों की प्रशंसा की। भारत बोध केंद्र में भारतीय कला, संगीत, आध्यात्म, इतिहास, दर्शन और अन्य संबंधित क्षेत्रों पर पुस्तकों तथा संसाधनों का एक संग्रह होगा। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान में 39 अलग अलग स्थानों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। प्रेस विज्ञप्ति में BLA ने घोषणा की है कि अभियान अब भी जारी है, जिसमें कई रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। आर्मी के प्रवक्ता जीएन बलूच के अनुसार हमलों में पुलिस स्टेशन, सैन्य काफिले और प्रमुख राजमार्गों के किनारे ढांचागत सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। BLA पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक सशस्त्र अलगाववादी गुट है, जो बलूच लोगों के लिए स्वतंत्रता चाहता है। BLA ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाए बिना दोहन किया जा रहा है और सरकार बलूच लोगों को उनके अधिकारों और स्वायत्तता से वंचित कर रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने आतंकरोधी कानून के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ मुकदमा पूरे होने तक जारी रहेगा। कल रात ढाका में अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद ने एक विशेष बैठक में यह निर्णय लिया। परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध कानून में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे किसी भी राजनीतिक दल, उसके संबद्ध निकायों या समर्थकों को दंडित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। ओमान में अमरीका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर आज शुरू होगा। ये वार्ता अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के ठीक पहले हो रही है। ओमान के मध्यस्थता में रोम में 3 मई को होने वाली चौथे दौर की वार्ता स्थगित हो गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ओमान ने वार्ता के लिए आज की तारीख का प्रस्ताव किया था, जिसे दोनों पक्षों की स्वीकार कर लिया था। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, हिमालय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, केरल, माहे, त्रिपुरा और ओडिशा में गर्म तथा आर्द्र मौसम की स्थिति बनी रह सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि बोर्ड के अधिकारी और IPL संचालन परिषद आज प्रतियोगिता पूरा करने के संभावित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोर्ड ने शुक्रवार को IPL निलंबित कर दिया था। प्रतियोगिता के 16 मैच शेष हैं। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। ये दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। आज के दिन भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और देश के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 के प्रक्षेपण में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों के योगदान और 6वें वैश्विक परमाणु परीक्षण को याद किया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।